गाथा, रूह वही, रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी नींद का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना, नौ उम्र लड़का सो रहा था और वह जाग रही थी। उसकी गहरी नींद पर उन्हें शिद्दत से रश्क आ रहा था। उनकी नींद का खजाना खत्म हो चुका था। अब नींद की दवाओं का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। ये दोनों सोसाइटी में नए नए दाखिल हुए थे और ऊंचे तबके के जिंदा दिल लोगों ने बड़े जोशो खरोश से उन्हें हाथों हाथ लिया था। नए ब्याहे हुए सलमान और शहनो की जोड़ी भी खूब थी। सलमान सबुक कद के हसीनो जमील नौजवान थे। शहनाज, जिन्हें सब प्यार से शहनो कहते थे, बड़ी अलबेली बाकी थी। उफ, वे भी क्या दिन थे जब लोगों की निगाहें उनके ताकुब में भटका करती थी। वह जमाना था जब नींद टूट कर आती थी। सरे शाम से ही आंखें मीठी मीठी होने लगती थी, पर अब जैसे नींद की थैलियां ही सूख गई हों। फरीद भी तो सोते में यूं ही मुंह बिसूर दिया करता था, उन्होंने सोचा। फरीद की याद बिजली भरी तलवार की तरह चमक कर दिल में तराजू हो गई। फरीद उनके पैरों की बेड़ी ना बन सका। अम्मी जान उसे अपने साथ रायपुर ले गईं। यह वही जमाना था जब तक नींद उनसे नहीं रूठी थी। इसी हरजाई नींद ने एक दिन नृत्य के बीच में उसकी बदमस्त अंखड़ियों में समाकर उन्हें उनके पार्टनर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। बॉस यानी मिस्टर दीन, लंबे चौड़े काले भस्म, बिल्कुल चौखटे तंबाकू के पिंड की शक्ल के, शहनाज को बदसूरती से हमेशा घिनाती थी। मगर यह काला देव सब्ज परी को न जाने क्यों भाग गया था। जब फरीद होने वाला था तो सलमान साहब अपने बॉस की बेगम की तन्हाइयां दूर किया करते थे। डार्लिंग, यह सब नौकरी की खातिर करना पड़ रहा है, उन्होंने समझाया था। शबाना की पैदाइश पर एकदम उसकी ममता जाग गई। मिस्टर दीन की अपनी कोई औलाद न थी। अम्मी जान का ख्याल था कि अगर बेटा होता तो शायद वह पिघल जाते। शहनाज ने बहुत चाहा कि बेगम को तलाक देकर उनसे शादी कर ले, मगर वह इस स्कैंडल के लिए तैयार ना हुए। मिस्टर दीन और मिसेस दीन इंग्लिस्तान के लिए रवाना हो गए और पलक झपकाते हुए शहनाज और उनके शौहर पत्थर मिली बंजर जमीन पर एड़िया रगड़ते नजर आए। क्या कयामत का वक्त था। अब आगे, 6 महीने का फ्लैट का किराया नहीं दिया था। दोस्त अहबाब मिस्टर दीन की दी हुई नौकरी से बने थे। वक्त बिगड़ा तो वे भी पर से गायब हो गए। इस वक्त अगर मिसेस दोराब जी ने, जो अपने मरहूम शौहर की शराब की दुकान को बड़ी मुस्तैदी से चला रही थी, आकर डूबती नाव को अपनी दौलत के छीटों से सहारा ना दिया होता तो ना जाने क्या होता। मालाबार हिल पर उनका शानदार फ्लैट था। उस पर कुछ पुलिस को एतराज होने लगा। वो फ्लैट उन्होंने पगड़ी पर दे दिया और खुद शहनाज के फ्लैट में एक कमरा लेकर रहने लगी। उन्होंने हालात की अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद 6 महीने का किराया अदा कर दिया। एक कमरा छोड़कर सारे फ्लैट पर कब्जा हो गया। इस अरसे में सलमान के जख्मी दिल पर खुर्शीद सहना ने मरहम रखना शुरू कर दिया। सहना ने हवाई जहाज के हादसे में जाबाज पायलट की मौत मरकर अपनी गमगीन बेवा के लिए अच्छी खासी पेंशन का इंतजाम कर लिया था। मिसेस दोराब जी ने एक कमरा फ्लैट में उसे दे रखा था। कुछ दिन ये अनोखा खानदान बड़े मजे से रहा। सलमान और खुर्शीद की जोड़ी बन गई। मिसेस दोराब जी शहनाज को बड़ी दिलचस्प हस्तियों से मिलाने लगी। कभी अफसर उनके गोल बोतलों के बक्स लेकर आ जाते, कभी जहाजी कह कहे लगाते आन मौजूद होते। बास के साथ खवातीन भी होती, कुछ को मिसेस दोराब जी की सहेलियां संभाल लेती। खूब कह कहे चलते, रिकॉर्ड लगाकर डांस किए जाते, चूमा चाटी से आगे बात न बढ़ती। यह और बात थी कि कभी कोई जोड़ा उठकर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता और यूं दिन गुजरते रहे, जिंदगी चलती रही। खुर्शीद और सलमान की बड़ी जानी पहचानी सी दोस्ती थी। अगर वह शादी कर लेती तो पेंशन बंद हो जाती, जो खासी माकूल थी। और सलमान खरा इश्क करना जानते थे, गृहस्थ बनाना उन पर जुल्म करना था। जब से नौकरी छूटी थी, खुर्शीद ही उनका खर्च उठा रही थी। यह खुर्शीद की खुशकिस्मती थी कि उसका शौहर उसके लिए पेंशन का इंतजाम करके मरा था, मगर शहनाज का तो कोई सहारा न था। अम्मी जान ने फरीद को अब लायक फायक बना दिया था। शबाना का होटल का खर्च अब काबू से बाहर हो रहा था। घटना भी कुछ बासी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे अम्मी जान के सुपुर्द कर दिया था। कुछ रकम जो मिस्टर दीन उन्हें जाते जाते थमा गए थे, वह तन्हाई और दिल की वहशत दूर करने में खत्म हो चुकी थी। कुछ मिसेस दोराब जी की शराब की बोतलों में खर्च हो गई, कुछ रेस कोर्स में डूबी। बंबई जैसे शहर में चंद हजार की हैसियत ही क्या। यह वह जमाना था जब फरीद की अचानक मौत ने उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया था। न जाने इतने दिन की सोई ममता क्यों एक झटके से जाग उठी। फरीद के रुखसत होते वक्त वह एलोरा अजंता की कला देखने अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। जुदाई का एहसास भी ना हुआ था, मगर मौत ने उन्हें कुचल कर रख दिया। महीनों वह गुम रही। अगर एक लम्हे को भी उन्हें होश आ जाता तो पागल होने लगती। फरीद के ख्याल पर वह एकदम अतीत की दम घोटने वाली फिजा से लौट आई। पहलू में पड़े हुए नौजवान ने एक लंबी चौड़ी करवट ली और चारों हाथ पैर फेंक कर फिसल गया। खिड़की से आने वाली रोशनी कुछ और दूधिया हो गई थी। उसका बेडौल जिस्म सारी मसहरी पर काबिज था। शहनो डार्लिंग, माय स्वीट बेबी, उसने उनके कान के लौ चबाते हुए उनसे शादी की दरख्वास्त की थी। उसके घोलते हुए अल्फाज सांप की फुंकार की तरह अब तक उसके कानों में रेंग रहे थे। शादी, एक एक करके न जाने कितने बरसों का बोझ उनके कंधों से सरक गया था। उन्होंने सिसकी भरकर खुद को उसकी कड़ियल बाहों में बेसुध छोड़ दिया। वह बहुत थक गई थी। अगर कुछ दिन और नींद ना आती तो उनकी हस्ती बारूद के ढेर की तरह भक्क से उड़ जाएगी। कितना फैलाव था नौजवान के चौड़े सीने में। उसकी ताजगी के साए में उनकी खुश्क हस्ती लहलहा उठेगी। उन्होंने थके हारे मुसाफिर की तरह निढाल होकर अपना मुंह उसके चटियल सीने पर टिका दिया और नन्ही सी यतीम बच्ची की तरह सिसकने लगी। फौजी जवान ने सोते में जैसे कुत्ते को पुचकारा, बेबी बेबी माय स्वीट बेबी डार्लिंग। वह फिर बड़बड़ाया और दूसरे लम्हे ख्वाबों की दुनिया में चौकड़ी भरने लगा। उनकी कनपटियां जल रही थी, आंखों में भोबल खटक रही थी, दिल एक भटके हुए पंछी की तरह फड़क रहा था। वह हौले हौले उसके जिस्म पर हाथ फेरती रही और आंसू बहाती रही। वह इस हंगामे की तन्हाई से घबरा चुकी थी। फ्लैट कहकहों से गूंजा करता, मगर उनके दिल की वीरानी और बढ़ती जाती। मिसेस दोराब जी न जाने कहां मगरिबो सायों के गौल में घेर लाईं। जब से शराबबंदी का कानून बना तब से फ्लैट निहायत शालीन किस्म का कहबा खाना बन गया था, जहां गाहक बतौर दोस्तों के आते। परमिट की शराब तो पहले ही हमले में खत्म हो जाती, फिर मिसेस दोराब जी की बोतलें खुलती और दादा ऐश दी जाती। कई बार उन्होंने उकताकर शादी करनी चाही। एक जान छोड़ हजार जान आशिक हुई, अपना तन मन धन सब लुटा दिया, मगर शिकार हमेशा रस्सा तोड़ाकर भाग निकला। और जब कोई उन्हें यूं जुल देकर निकल जाता तो उन पर मुर्दनी के दौर पड़ने लगते, पुरानी पेचिश उभर आती, खून का दबाव बढ़ जाता और वह टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए शराब का सहारा लेती। ऐसे मौकों पर मिसेस दोराब जी उन पर खूब खूब छींटे कसती। एक दफे तो उसने उन्हें इतना सुलगाया कि जूती लेकर उन्होंने उसका पलेथन निकाल दिया। वह भी गुस्से में आकर चली गई। उसके जाते ही शहनाज में एक अजीमोशान इंकलाब वाकई हुआ। उनकी मुलाकात एक जबूत किस्म के शायर से हुई और वह बड़ी उमंग से मुल्क में इंकलाब लाने पर तुल गई। हरामी बच्ची की माँ की हैसियत से वह खुद को बेइंतहा इंकलाबी समझती थी। आर्ट और कल्चर की खिदमत के सिलसिले में उन्हें एक एक करके कई फनकारों पर आशिक होने का मौका मिला। मिस्टर दीन की अता की हुई साड़ियां बिल्कुल बेकार हो गईं। उन्हीं दिनों उन्होंने निहायत वागियाना और मैली साड़ियां पहनकर वाकई मजदूरों में काम करना शुरू कर दिया था। उस माहौल में ना तो अंग्रेजी शराब कुछ सजती और ना आसानी से मुहैया की जा सकती थी, लिहाजा उन्होंने निहायत सस्ती दारू पर स्नेह जताना शुरू कर दिया। उफ, क्या हंगामा खेज दिन थे। वह भी मैले मैले फनकारों से उनका फ्लैट खचा खच भरा होता, सस्ते ठर्रे की गंध से फिजा बस जाती। तब इल्मो अदब, फलसफा और शायरी पर मुबाहिसे होते जो अक्सर जूतम पैजार पर खत्म होते। मगर जल्द ही उन्हें कायल होना पड़ा कि नंगे भूखे फनकारों की सोहबत में रूहानी खुराक तो मिल सकती है, मगर मकान का किराया और घर का खर्चा अगर उनकी खाल भी उतार ली जाए तो भी नहीं चल सकता। मजबूरन उन्होंने मिसेस दोराब जी से मेल कर लिया। वह शायद मुंतजर ही बैठी थी, फौरन राजी खुशी मान गई। उसने उजड़े हुए फ्लैट को दोबारा संवारा और फिर वही सूफी किस्म के दोस्त और विलायती शराबे चलने लगी, सैलानियों के जमघटे रहने लगे। और यह शुमाली का गबरू उसी के सिलसिले की कड़ी था। आंसुओं की चिलमन में से उन्होंने नींद के माते जवान को देखा। उसकी नाक और ऊपर के होंठ पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदे हीरे की कनियों की तरह दमक रही थी। उन्होंने झुककर अपने सर्द और बासी होंठ उसके दहाने के कोने पर रख दिए, जहां जागते में एक नन्हा सा गड्ढा मुस्कुराने लगता था। पौ फटने लगी थी। कोई दम में सूरज की बेरहमी सलाखें उन सोई हुई आंखों में चुभने लगेंगी और फौजी जवान जाग उठेगा। उन्होंने एक बार जी भर के लाडले को देखा और उस पर चादर डाल दी। एक लम्हे को पलक झपकाए बगैर वह थके हुए जिस्म को घसीटकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आईने में वह अपने चेहरे के वीरान खंडहरों को देखकर कांप उठी। उसके जागने से पहले मरम्मत करनी होगी। वह बेपैर कमरे में दाखिल हुई तो वह जाग रहा था। उन्हें देखकर उसने अंगड़ाई बीच में ही तोड़ दी और घबराकर चादर अपने गिर्द लपेट ली और अपनी झेपी हुई मुस्कुराहट को सिगरेट के धुएं के पीछे छुपाने लगा। बेबी, उसने हकलाकर कहा और वह पत्थर का बुत बन के बैठ गई। बेबी कहाँ है? आवाज उनके गले में सहम कर रह गई। हाँ, वह गौर से उन्हें पहचान कर बोला, आपकी बेटी है ना? कितनी शक्ल मिलती है आप दोनों की? वह अंग्रेजी में बोला। क्या बक रहे हो? उन्होंने गुस्से से तनकर कहा। मैं इतना कमीना नहीं हूं मैडम, हम शादी कर लेंगे। वह फटी फटी आंखों से उसे तकने लगी। फिर जल्दी से मेकअप का बैग उठाकर दोनों हाथों से भीचे लौट आई। उन्होंने एक बार फिर अपनी शक्ल आईने में देखी और उस सुनसान खंडहर के पीछे कमसिन हसीना को ढूंढने लगी, जिसे नीम अंधेरे कमरे की धुआं भरी फिजा और शराब के नशे ने उस नौजवान की बहकी हुई आंखों में एक शाम के लिए जन्म लेकर सुबह को करीब और खंडहर में दफन चिर निद्रा में सो रही थी। उन्होंने मेकअप का बैग दूर कोने में फेंक दिया और आंसुओं से छलकते कहकहे लगाने लगी। नाश्ते पर सूजी सूजी गिलाफी आंखों वाला नौजवान बड़ी बेचैनी से बेबी के कदमों की चाप सुनने के लिए बेकरार था। बार बार वह उनके चेहरे में उस खोए हुए ख्वाब को ढूंढ पाता और खुद ही छेपने लगता। जाने से पहले सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके लहजे की मिठास उनके कलेजे में रस खोल गई। उन्हें इस खुशामत पर प्यार आ गया। तुम उससे नहीं मिल सकते, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। क्यों? मगर मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज नाश्ता खत्म कीजिए और तशरीफ ले जाइए। उन्हें गुस्सा आने लगा, जैसे वाकई उसने उनकी मासूम बेटी को खराब कर दिया हो। उसने नाश्ता नहीं किया, सर पकड़े खामोश प्लेट पर नजरें जमाए बैठा रहा। थोड़ी सी विस्की मिल सकेगी? उसने दोनों हथेलियों से कनपटियां दबाई। नहीं, वह बड़ी दुरुस्तगी से बोली। जाते वक्त उसने बड़ी पीड़ा भरी आवाज में कहा, बेबी से कहना मेरा इंतजार करे, दौरे से वापस लौटते वक्त मैं फिर आऊंगा। शादी के बाद मैं उसे लुधियाना ले जाऊंगा। उसने अहमकों की तरह आंखें झपकाकर आंसू पी लिए। जब वह चला गया तो वह देर तक क्षितिज के उस पार बेबी को नौजवान की मजबूत बाहों में सोता हुआ देखती रही। बंबई के हंगामों से दूर और मुहज्जब कहवा खाने और मिसेस दोराब जी के चंगुल से आजाद, नित नए सैलानियों के गिरफ्त से बाहर, खुले खेतों की महकती हुई ओस में, नहाई हुई धरती की गोद में, दो नैनों के मतवाले जवान जिस्म, गेंदे और चमेली के गुथे हुए दो तरोताजा गजरों की तरह एक दूसरे में उलझे हुए, उनकी बेरौनक आंखों में घुटे हुए आंसुओं की तरह खटकते रहे और उनकी बूढ़ी आंखों में जहर घोलकर न जाने कहां जासोई थी। गाथा में अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी नींद का दूसरा और अंतिम भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।